जय राम जय 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 Thank you.
శ్రీరాధారాయణ భగవానికి కృష్ణ బలరామకి హరే కృష్ణ సద్భక్తురాజ్ విశేష భూమి విశేష స్వాగత ఆగే అందిస్తారు ఆర్ आज एक विशेष दिन है. क्या है आज? विजयदशमी. और इस पावन अवसर पर आज हर जगह लोगों ने रावण के पुतले को जलाया है. और रावण जो कि एक लोग उसको बड़े जानते हैं कि बड़ा दुष्ट था और उसने बड़े घृणित कार्य भी किए थे. और यहाँ तक कि सीता का भी उसने हरण किया और उसको भोगना चाहा. लेकिन अंत जैसे कि सदैव हम सुनते आए हैं कि जीत अंत में सच्चाई की होती है. और भगवान राम ने जो है उसका वध किया और अधर्म पर धर्म की जीत हुई. तो इस विजयदशमी के अवसर को जैसे कि मैं बाहर खड़ा था तो किसी भक्त ने दिखाया, पंजाबी बाग में रहते हैं लोग, तो उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा किया और छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और एक दिन की ट्रेनिंग के बाद उनके ड्रेसेस मंगाई और उन्होंने अपने घर के ही गार्डन में बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन किया आखिरी समय युद्ध का. और घर के बच्चे ही जो है रावण मेघनाथ हनुमान सब बने थे. एक अच्छा चित्र था, अच्छा लगा. क्योंकि धीरे धीरे जो परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है तो कहीं ना कहीं बची हुई हैं. गली गली में रामलीलाओं के द्वारा भगवान को राम को याद किया जाता है. उनकी लीलाओं को हम लोग जानते हैं, हर साल देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लीलाओं को देखते हैं सुनते हैं तो कभी बोर नहीं होते. वो सब लीलाएँ हैं भगवान के विषय में, मालूम है क्या हुआ था कैसे हुआ था, लेकिन उन लीलाओं का दर्शन बड़ी बड़ी रामलीलाओं के द्वारा होता रहता है. और फिर ये कैसा मनोरंजन है लोगों के लिए. इस मनोरंजन में और जो हम लोग मनोरंजन करते हैं टेलीविज़न में और बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में जाकर जो मनोरंजन करते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है. 3 घंटे हम लोग किसी फिल्म के लिए भी देते हैं और कई बार 3 घंटे हम लोग रामलीलाओं को या धार्मिक जो हैं भगवान के सीरियल जो आते हैं उनको भी देखते हैं. तो हम लोगों की जो रुचि है ज़्यादातर फिल्म में रहती है या आजकल के स्टार्स हैं उनके प्रति रहती है. और क्योंकि वो कुछ 3 घंटे में या 2 घंटे में कुछ ऐसा कर दिखाते हैं, क्योंकि चमत्कार को भी नमस्कार है संसार में. जो अच्छी छलांग लगा दे तो उसको नमस्कार, जो थोड़ा वेट ज़्यादा उठा ले तो उसको नमस्कार, जो किसी को घूंसे ज़्यादा मार दे तो उसको पुरस्कार, कोई थोड़ा तेज भाग ले तो उसको पुरस्कार, कोई साइकिल में ज़्यादा तेज भाग ले तो उसको पुरस्कार, कोई कूद अच्छी मार ले तो उसको पुरस्कार. इस तरह बंदर प्रजाति के लोग भी संसार में ज़्यादा हैं. तो इस प्रकार के उछल कूद में भी जो है सोने के सिक्के मांडे जाते हैं सरकार के द्वारा और लोग अपना समय लगा दे रहे हैं और जीवन भी लोग अपना समाप्त कर रहे हैं. एक बॉल है उसमें से 22 लोग भाग रहे हैं तो कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं और एक लकड़ी का डंडा लेकर दूसरे लोग बॉल को मारते हैं फिर वो भागते हैं. तो ऊपर से देवता लोग देखते होंगे तो बड़े जो हैं विचित्र रूप से हंसते होंगे. उनके लिए चुटकला होता है ये, जैसे हम लोग कई बार यहाँ पर देवताओं पर चुटकले बनाते हैं तो ऊपर जब देवताओं को हंसना होता है तो वो हम लोगों के ऊपर चुटकले बनाते हैं. वो तो कहते हैं देखो मनुष्य जीवन पाकर ही फुटबॉल खेल रहे हैं है ना. देवता लोग श्रीमद् भागवत में भगवान से श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण भगवान की जय. देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान हम लोगों को यहाँ पर इतना ऑपुलेंस है, इतना ऐश्वर्य है कि हम लोग सभी इस ऐश्वर्य को भोगते समय आपका स्मरण कीर्तन नहीं कर पाते, आपकी चिंता आपका आपका स्मरण ही नहीं हो पाता. इतना ऑपुलेंस जो हमें चाहिए तुरंत उपलब्ध है, इतना ऐश्वर्य है यहाँ पर और आपका स्मरण कीर्तन बिल्कुल नहीं कर पाते. तो भाग्यशाली है वो लोग जो इस समय पृथ्वी पर हैं जिन्हें मनुष्य देह प्राप्त है. क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि ये लोग छोटे मोटे दुख के कारण या कुछ समस्या के कारण तुरंत आपकी शरण में आते हैं और आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आपका नाम लेते हैं और जगह जगह कीर्तन इत्यादि होते रहते हैं जिससे इनके पाप समाप्त होते रहते हैं। और इनमें जो बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं वो तो आपका भजन कीर्तन बढ़ा देते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। तो केवल एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कि आपको प्राप्त किया जा सकता है अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुख प्रसिद्धि, कि आपकी पृथ्वी पर रहकर भक्ति करने से, कैसी भक्ति, अहेतु की मतलब जिसमें कोई हेतु ना हो, हेतु मतलब तो स्वार्थ ना हो, अपना और कोई इच्छा या कोई डिजायर ना हो। भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ा सुंदर श्लोक आया है, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मानादिव्रतम, अर्थात कि जब व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, एक व्यक्ति जो इच्छाओं से मुक्त है वो सुखी है, वो आनंद है, उसके अंदर उस पीस है, खुश है। एक व्यक्ति जो पूर्णतः इच्छाओं से भरपूर है वो विचलित है, दुखी है और परेशान है ना जी, होता है कि नहीं? जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं वो उतना ज्यादा दुखी, क्योंकि सारी इच्छाएं तो पूरी होती नहीं। तो इस प्रकार व्यक्ति जो ज्यादा इच्छाएं हैं वो दुखी रहता है। शास्त्र कह रहे हैं अन्य अभिलाषा, अर्थात भक्ति की अभिलाषा छोड़कर और सभी प्रकार की इच्छाओं को समाप्त करना चाहिए। अनुकूल अर्थात अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र सभी कहते हैं कि हम लोगों को जैसे तैसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी मुक्ति का कारण है, मुक्तिदाता सर्वेषां। भगवान जो है मुक्तिदाता है, उनको इसलिए मुकुंद कहा गया है। तो जब हम भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन करते हैं तो ये हमारा इस भौतिक जगत से जो है अटैचमेंट्स धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो जब हम सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, जब हम लोग इन सारी इच्छाओं का त्याग करके केवल एक इच्छा रखते हैं वो है भगवान, तो क्या होता है, हमारी जो मटेरियल डिजायर्स हैं धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। तो जब हमारी इस तरह की इच्छा, देखिए भगवान का स्मरण करना और कीर्तन करने में तो रावण और कंस भी बहुत आगे थे, नहीं आज दशहरा है तो रावण भी हर समय किसका चिंतन कर रहा था, राम का चिंतन कर रहा है। अरे कन्याकुमारी तक पहुंच गई, रामेश्वरम तक पहुंच गए, है ना, अब पुल बना रहे हैं सेना। आज जैसे सार्वभौम बाबू जी बता रहे थे कि इतनी सुंदर फोर्स खड़ी करी भगवान राम ने, जिसको बोलते 0% जो जीरो बजट सेना थी उनकी, उनको कोई अपनी सेना को बनाने के लिए बहुत लाखों करोड़ों खर्च नहीं करना पड़ा। आजकल की सरकार कितना लगाती है बजट पे, 60% 40% 80% केवल हम लोगों की सुरक्षा पे खर्च हो रहा है। एक देश दूसरे देश से डरा हुआ है और अपने जितनी कमाई कर रहा है या जितनी भी प्लानिंग चल रही है उसमें 60-80% वो अपने देश की सुरक्षा पे खर्च कर रहे हैं और हमारा खून चूसा जा रहा है यहां पर टैक्स लगा लगा के। अगर दो समझदार आदमी हो, समझदार की बात कर, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे, समझदार लोगों की जो कृष्ण भावना भावित, जिन्हें मालूम है हम ये शरीर नहीं, हम है आत्मा और इस देश की रक्षा या सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं, किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है, और सबको कृष्ण भावना भावित बनाना। तो ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सेटिस्फाइड है वो क्यों दूसरे के देश पर या उसकी बाउंड्री पर नजर मारेगा। तो अगर प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हों, देश के राष्ट्रपति ऐसे हों जो कृष्ण कॉन्शियस हों, तो उनकी प्रजा भी कृष्ण कॉन्शियस होगी, जितना सरल जीवन जीने उतना अच्छा है। तो फिर क्यों एक दूसरे देश में चढ़ाई करेंगे, और जब लड़ाई नहीं होगी तो क्यों 80% और 60% अपने टोटल बजट का अंदर सुरक्षा पर खर्च करेंगे। तो जितने भी तो बड़े बड़े बम बनाए जा रहे हैं वो किसके लिए बनाए जा रहे हैं, किसका नुकसान होगा, उसको अपने को मारने के लिए तो बना रहे हैं ना, हमने तो मरना है इससे। आए दिन अखबारों में पढ़े ना गोली लगने की, विस्फोट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को मारा जा रहा है, तो हम ही लोग तो मर रहे हैं। हम नहीं मर रहे तो हमारे थोड़े से ऊपर चले रिश्तेदार मर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे के सारे अगर पिता 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 देखें कौन किसके हैं तो बाद में पता चलेगा सब रिलेटिव ही थे, उसी प्रजापतियों ने सारी सेना बनाई है। तो वो एक दूसरे को मारने के लिए प्रबंध कर रहे हैं बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाकर। तो बता रहे हैं कि भक्ति क्या है, अन्य अभिलाष श्वेता शून्य। जब हमारी सभी प्रकार की अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं तो हम लोग फेवरेबल कंडीशन में जो भगवान की भक्ति करते हैं उसको बड़ी उत्तम भक्ति कहा गया है। रावण भी हर समय भगवान का चिंतन कर रहा था, क्यों? क्योंकि गलत काम करके आया, जैसे कोई चोरी कर लेता ना तो हमेशा डरता रहता है, अरे बाप रे बाप आज मरा, आज नहीं तो कल मरा, कोई नौक नहीं करता उसको लगता है वो आ गया। अचानक किसी को बोलते प्रभु जी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मालूम पड़ी है, आज आप देखना, नींद नहीं आएगी इसको, क्योंकि किसी से भी कान में बोल दीजिए ये बात, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चोरी करके बैठा है, चकारी करके बैठा है, कोई गलत काम करके बैठा हुआ है, वो सत्य में आ जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, क्या पकड़ा गया मेरा आज, डरेगा कि नहीं डरेगा, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है कहीं ना कहीं उसने गड़बड़ की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी हर व्यक्ति ने, करी नहीं करके रहा होगा, बस उसे काम में ये बोल दो कि आपकी बात पता चली है और आज आप शांति जरा मिल लेते सत्य में आ जाएगा मर गया मैं, है कि नहीं, गलत तो नहीं करे है तो ही ऐसा परेशान ही रहेगा वो जब तक की बात पता नहीं चल जाए, और फिर वो प्लानिंग मतलब उसके दिमाग में चले कौन सी बात पता चली होगी क्या मैंने किया था, वो किया था बहुत कुछ कर पता कौन सी चली है, तो इस प्रकार बड़ा टेंशन में रहता, और इस प्रकार टेंशन में रहने के कारण वो व्यक्ति तब तक निश्चिंत नहीं होगा जब तक की सामने पूर्ण। अगर कोई व्यक्ति सत्य पर आधारित है, ऑनेस्ट है, सरल है, तो ऐसा व्यक्ति को कुछ डर है किसी बात का, कोई चिंता ही नहीं उसको, कोई आकर बोल भी देगी भैया ये हो गया वो हो गया आज आपकी खैर नहीं है, लोग आ रहे बात करने, मैंने क्या किया ऐसे, आ जाओ क्या दिक्कत बात कर लेंगे, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी, वो व्यक्ति किस बात पर टेंशन में आएगा। लेकिन हम लोग तो कहीं ना कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो जैसे कोई ऐसा सेंटेंस सुने तो मुझे परेशान हो जाएगी, मर गया भैया। तो रावण भी जो है हर समय क्या काम करके आया था, वो सीता माता को लेकर आ गया था विवाह के लिए कि मैं इससे विवाह करूंगा, इसका भोग करूंगा, और जब घर में कोई खटक की आवाज भी आती थी तो लगता राम 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 नहीं है, हर समय राम का चिंतन चल रहा, महाराज आज वहां तक पहुंच गए, खबरदार मार डालो उन ग्वाल को, कौन है वो लोग, हमेशा डरा हुआ रहता है, राम 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 का ही चिंतन करता रहता, और अंत समय में राम का चिंतन करते हुए, राम का नाम लेते हुए, राम से युद्ध करते हुए मरा और मुक्त हो गया कंस। वो भी हर समय जब से वो आकाशवाणी हुई थी कि कंस तेरी बहन का जो पुत्र आठवां पुत्र होगा वही तेरा काल बनेगा, उसके हाथों तेरी मृत्यु होगी, उस दिन से लेकर वो मरने तक कृष्ण कॉन्शियस रहा, मार देगा मैं अब मरा और कब मरा, हर समय भगवान का चिंतन कर रहा है, और शास्त्र में भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा चिंतन करो उससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, वो मरने वाला है लेकिन चिंतन किसका कर रहा है, कृष्ण का कर रहा है, डर के मारे कर रहा है, इतना चिंतन कर रही, हमसे भी ज्यादा चिंतन, हम तो कुछ भी नहीं करते, दिन में आधा घंटा 15 मिनट थोड़ी देर दिल लगाते हैं मन लगाते हैं भगवान में, लेकिन हमसे ज्यादा तो अच्छे भक्त कौन थे, ये रावण और कंस हमसे ज्यादा अच्छे, हर समय भगवान का स्मरण करते रहते, और उनके स्मरण का रिजल्ट क्या हुआ कि स्वयं भगवान को आकर उसको मारना पड़ा। बताते हैं इतना चिंतन करता था कंस कि कृष्ण आ गया तो क्या होता था, वो जब शीशा देखता था ना अपनी फोटो देखता था शीशे में, तो उसको तो शक्ल ही नहीं दिखती, मतलब हेडलेस मेरे सर पैंट फिर दिखो में लगा हुआ है, जब चलता था कीचड़ पर तो उसके पैरों को निशान नहीं करते थे, ऐसे ऐसे अब शगुन उसको सपने आते थे, सब चीजें दिखती थी उसको, हर समय डर के उठ जाता था कृष्ण आ गए, इस प्रकार जो है अनफेवरेबल कंडीशन में भगवान का स्मरण करता था। लेकिन क्योंकि हर समय कृष्ण का स्मरण कर रहा है, चाहे अनफेवरेबल कंडीशन में या सॉरी बड़े प्रतिकूल भाव से, तो भी भगवान ने उसको मुक्त किया। और हमें जो चाहिए वो क्या कि हम लोग भी भगवान की भक्ति करें, लेकिन किस रूप में, या तो फिर बने कंस या रावण की तरह इतने ज्यादा दुष्ट हो जाए, छोटे मोटे दुष्टों काम नहीं चलेगा। छोटे मोटे दुष्टों के लिए तो पुलिस के छोटे छोटे सिपाही ही नहीं बोलते, उसके लिए भगवान के अवतार लेंगे। नहीं, छोटी चोरी कर ली, बड़ी चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, नाना प्रकार की पचासों चीजें कर ली है ना, टैक्स बचा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो इसके लिए हमें पुलिस की उसकी जरूरत है, भगवान की जरूरत है इन कामों में। वो तो आसपास के छोटे मोटे सिपाही काम कर लेते हैं, है ना। तो अगर करना है, अगर बढ़िया काम करना है, तो भगवान से, भगवान के हाथों मरना है, तो फिर इतना बड़ा काम करो, इतने मतलब बुरे हो जाओ, और इतना ज्यादा गॉड कॉन्शियस होना पड़ेगा, उस समय भगवान का नाम लेना पड़ेगा आपको, कि भगवान तुम आओ, तुमसे मरो, मेरे को इनसे नहीं मरना चाहता मैं, है ना, तो फायदा है। नहीं तो फिर क्या करो, इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इस तरह बोलो कि चलो भैया भगवान के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लेते जैसे मैंने, तो फिर फायदा है। नहीं, नकली चोर नहीं बनना, छोटी मोटी चोरी नहीं करनी, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम लोग आज के दिन की विशेषता देखें तो यही है कि जो रावण था, और रावण हुए, कुंभकर्ण हुए, है ना, शिशुपाल और जयद्रथ हुए, और उसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, ये सब दो दो लोग जो थे, ये वास्तव में कौन थे, जय और विजय थे, भगवान श्री कृष्ण के या भगवान विष्णु के जो वैकुंठ धाम है उसके द्वारपाल थे दोनों, जय विजय। और जय विजय गेट पे खड़े होते थे चार हाथों के साथ, है ना, चार हाथ थे उनके। तो उन्होंने क्या किया, चार जो हैं, जो वो थे चार कुमार, ब्रह्मा जी के चार पुत्र, उन्होंने जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रयास किया कि हम तो भक्ति करेंगे भगवान, तो मैं विशेष भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन एक दिन सुगंध सुंघी उन्होंने भगवान के चरण कमलों की, तुलसी, और चल पड़े वैकुंठ की तरफ, और भगवान से मिलने की इच्छा हुई, तो तब रोका गया उनको दरवाजे पे कि आपने ठीक ढंग से कपड़े नहीं पहने, सॉरी हमने कपड़े पहने ही नहीं, इसलिए आप अंदर नहीं आ सकते। तो भगवान के घर में जाने के लिए कपड़े पहनना चाहिए, नहीं तो जय और विजय के द्वारा रोक दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं आज का समय बदलता जा रहा है, तो वेशभूषा लोगों की बदलती जा रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि जय विजय की तरह हमको भी जय विजय खड़े रखने पड़े बाहर जो लोगों को भारी रोक दे। जय विजय के चार कुमार भक्तों ने श्राप दे दिया कि तुम असुरी प्रवृत्ति के हो, तुम्हें मालूम नहीं किससे कैसे डील करना, तुम जानते नहीं हो, और उनको श्राप दे दिया, उनका श्राप लग गया। लेकिन आजकल के लोगों को तो श्राप भी नहीं लगेगा, उनकी कुछ है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं, वो ऐसे दो तीन बार ऐसे करते हैं, इससे भक्ति थोड़ी लगे। तो अगर किसी को श्राप देना है, उसके लिए भी हमारे अंदर भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग जब जय विजय नहीं खड़े करेंगे, हमारे दूसरे तरह के गार्ड खड़े हैं दो हाथ वाले, और इस तरह के अगर लोग आएंगे तो शायद मना भी करेंगे, लेकिन नहीं। तो चार कुमारों ने जब उनको श्राप दे दिया, तो फिर भगवान वहां पर आए उनको बीच बचाव करने के लिए, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह हमने रोका, इससे श्राप कर लिया, कहते महाराज आपकी सेवा में लगे, इस तरह ये नंगे लोग अंदर जा रहे थे तो हमने रोक दिया अंदर आने से। तो एक्चुअली हुआ क्या था ना, भगवान ये सारी की सारी घटनाएं ऐसे नहीं कि अपने आप हो रही, इन सब चीजों के पीछे भगवान का ही हाथ होता है। जब भगवान का लड़ाई करने का मूड होता है तो किससे लड़ाई करेंगे बताओ, कोई भगवान से लड़ाई करने वाला है, कोई लड़ सकता है भगवान से, कोई भी लड़ सकता है। लड़ने के लिए भी भगवान को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर कुछ बल हो। अब भौतिक जगत में बल किसके पास मिलेगा, जिसे 400 किलोमीटर उठा तो भगवान को तो फूंक ही मारेंगे तो खत्म हो जाएगी, क्या फायदा, क्या लड़ने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए ना सामने। तो भगवान ने अपने ही पार्षदों के द्वारा ये अपराध करवाया, ताकि मेरे जो हाथ में खुजली हो रही है, बहुत दिनों की लड़ाई नहीं करी गए हैं, भगवान ने कहा किससे करूं, तो अपने ही पार्षद नित्य मुक्त पार्षदों को ये घटना घटवाई, चार कुमारों को द्वारा श्राप दिलवाया, और भगवान ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बीच बचाव करता हूं, तुम लोग असुर जाति में तो पैदा हो गए नीचे जाकर, लेकिन तुम लोगों का उद्धार करने के लिए मैं ही आऊंगा। अब देखिए वैकुंठ के निवासी जय और विजय, ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में यहां पर आए, और इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि कोई भी देवता उनके आगे खड़ा नहीं हो पाता था। क्यों? देवताओं में कम शक्ति होती है, इसका मतलब क्या? हाँ, देवता इस लोक के आदमी हैं। देवता लोक के ब्रह्मांड को चलाने के लिए क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। ये वैकुंठ के लोग हैं, मुक्त लोग हैं, नित्य मुक्त लोग हैं, उनके अंदर कितनी शक्ति होगी। इसलिए देवता लोग कभी भी इनकी कुछ इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए देवता लोग कांपते रहते हैं। इसलिए जब हिरण्यकशिपु खूब तपस्या करी, ब्रह्मा जी से भी वरदान प्राप्त किया कि ना मरूं मैं, इस तरह ना मरूं मैं, उस तरह ना मरूं, वरदान मिल गया तो कौन मार सकता था इनको? कोई देवता नहीं हाथ लगा सकता था। इसलिए भगवान स्वयं अंतरित हुए। जब हिरणाक्ष ने जो है पृथ्वी को रसातल में डाल दिया तो भगवान वराह के रूप में आए। वराह मतलब सूकर, सूअर की योनि। अब देखने में तो बड़ा घृणित होता सूअर का जीवन, लेकिन रसातल में पृथ्वी के डूबने के कारण उसको निकालता कौन? तो भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया और अपने यहां पर नाक पर रखकर पृथ्वी को बाहर निकाला। हिरणाक्ष जिहरी कौन है, इतना सुंदर सुंदर का सूर्य में कितनी सुंदरता, इस वराह रूप में भी भगवान को इतना सुंदर इतना वर्णन किया गया है। और फिर जब देखा कि ललगा रहा है हिरणाक्ष, तो भगवान ने कहा एक मिनट को, पृथ्वी को रखा साइड में और फिर उनसे लड़ाई हुई। देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं, हाँ हिरणाक्ष आज मरेगा, लेकिन कई बार हिरणाक्ष रखता था ऊपर चढ़ रहा है, थोड़ा बलवान दिख रहा है, क्योंकि असुर लोगों की शाम की शक्ति ज्यादा हो जाती है, थोड़े पी लेते हैं नहीं मिलते समाज में आपको ऐसे सड़क पर गिरे हुए मिलते होंगे, शाम को 6 बजे के बाद ही बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और इनका उस दिन हम जा रहे थे 7:45 बजे, हमने देखा अंग्रेजी शराब की देसी दुकान ऐसे कुछ लिखा है, तो वहां पर लोग इस प्रकार भाग रहे हैं सड़कों से, गाड़ियों से उतर कर, स्कूटर बाइक से उतर कर भाग रहे हैं ऐसे दुकान की तरफ। मैंने कहा हे भगवान, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही लल्लन चाहिए हमें आपके पास आने के लिए। 7:45 बजे दुकान बंद ना हो जाए, इसलिए स्कूटर से बाइक से उतरकर भाग रहे हैं दुकान में शराब लेने के लिए। इतनी तेज, इतनी तीव्रता, इतना लॉलियम। भक्त लोग कहते हैं इस तरह का लॉलियम चाहिए भगवान को प्राप्त करने के। जिस दिन हमारे अंदर भी इस तरह का उत्कंठा हो जाएगा ना भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान के रूप को देखने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, उसको कहते हैं प्रेम डेवलप कर दिया। शराबियों ने एक दिन में नहीं करा ये डेवलप, पहले एक पैक लगाया था, थोड़ी सी बियर पीते थे पहले, फिर दूसरी जगह जाने लगे, फिर थोड़ी सी और पी, फिर और पी, फिर पूरी बोतल पीने लगे, फिर मिलाकर पीने लगे, और आज ये सबसे नंबर वन पियक्कड़ बन गए। एक दिन में होता है क्या? एक दिन में कोई थोड़ी सी पीए तो नीचे आ जाएगा ना? इतनी मेहनत करी है, कई महीनों की, कई सालों की मेहनत है ये, इसलिए उसको आज 7:45 बजे या 8 बजे में 5 मिनट बचते उसको खुजली शुरू हो जाती है पूरे शरीर में, रोमांच कंपा पूरे शरीर में जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, सिर चकराने लगता है, भाव को अष्ट साथी निकाल उसके शरीर में दिखने लगते हैं। उसे कुछ नहीं दिखता, ना बिजनेस, ना प्रॉफिट, ना पैसा, ना डीलिंग, कुछ नहीं दिखता इस समय। क्या चाहिए? मदिरा चाहिए। और वो भागता है पूरे जोश में, और किसी तरह गाड़ी खड़ी कर नो पार्किंग में लगा, बाद में पैसे दे दूंगा, पुलिस वाले पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए? मदिरा चाहिए। तब जाके उसने इतने महीनों में ये टेस्ट डेवलप किया भगवान को सर दारू के प्रति, इतने महीनों में। तो हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। किसके प्रति? मदिरा के प्रति। कोई नहीं बना मजाक, भगवान के प्रति डेवलप करना पड़ेगा। तो कैसे डेवलप करेंगे? जब भगवान का बारे में सुनेंगे। पहले हम सुनते थे, लोग कहते थे अरे वो जो है वो ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है, धर्मेंद्र उसके इसमें आता है, हम बैठेंगे मिल बैठेंगे दो साथ हैं, सुना उसके बारे में बार बार, देखा उसके बारे में बार बार, है ना, विदेश से इंपोर्ट की हुई है, इतनी महंगी है, हैं ऐसे बोलते हैं, इतना सुना, थोड़ा सा पिया, थोड़ा चखा, टेस्ट बढ़ाया, और डाला है ना, बिना उसके पानी के पिया, ऐसे भी करते हैं, ऐसे पीते लोग कई बार। तब जाके उसने आज टेस्ट डेवलप किया। इसी प्रकार जब हम लोग भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, रोज मंदिर आएंगे या दर्शन करेंगे या उनका नाम जप करेंगे, तो धीरे 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 प्रेम डेवलप होगा। और जिस प्रकार वो शराबी ठेके पे भागता है 8 बजे, उसी प्रकार 9 बजे सब लोग भागते हुए दर्शन ना बंद हो जाए मंदिर के दर्शन करने आएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। और नारद मुनि को कहा था भगवान ने, जब दर्शन दिए और ओझल हो गए उसकी दृष्टि से, नारद परेशान हो गए 5 साल की उम्र में कि भगवान अब मैं कैसे देख पाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं बस अब नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी आपके अंदर कुछ मटेरियल डिजायर्स हैं, कुछ मटेरियल टेंट्स हैं, उसको भी खत्म करना पड़ेगा। किसी प्रकार की इच्छा नहीं चाहिए संसार में, तो मैं खाऊंगा क्या, रहूंगा कैसे, कौन पालेगा। हाँ अगर आप को लगता है कि आप पालते परिवार को, तो भगवान का पालन हार नाम ही नहीं होना चाहिए, नहीं भगवान का नाम विशंबर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व का भरण करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने आप को पाल रहे हैं, हम फैमिली प्लानिंग्स कर रहे हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं। कबूतर, गधा, घोड़ा, बिल्ली, शेर कौन से प्लानिंग करता है, खाना नहीं मिलता क्या उसको, कभी देखो कि भूखा मर गया, सब कुछ खाने को 40 टन हाथी को खाने को मिल रहा है। अगर आज कोई भूखा मर भी रहा है तो इसलिए क्योंकि आदमी ने उनका खाना शुरू कर दिया, जंगल काट के बिल्डिंगें खड़ी कर दी, इस कारण से हो रहा है। तो ये हमारी गलती है, ये हमारा नुकसान है। तो भगवान पालनहार हैं, वो विश्वंभर हैं, अगर उन पर हम पूरी तरह शरणागत हैं तो हमारा लालन पालन भगवान कर लेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि घर बैठ जाओ, है ना, नहीं तो पहले ऐसे बोल दें कल से बोल दिया तब तो ऐसे करेंगे, नहीं, हमारा जो कर्तव्य है, जो धर्म है, उसे पालन भी करना चाहिए। पति का धर्म, स्त्री का धर्म, बच्चों का जो धर्म है उसे पालन करना चाहिए पूरा शास्त्र के अनुसार, और बाकी पालन भरण पोषण भगवान करेंगे। तो इस प्रकार भगवान की तरफ जब हमारी शरणागति बढ़ती है तो हम लोग भगवान के और नजदीक हो जाते हैं, तब हमें किसी वस्तु चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो असुरों में जब इन असुरों ने भी इस प्रकार किया, शक्ति अर्जित कर ली, तो भगवान को स्वयं अवतरित होने पड़ा और उनसे युद्ध करना पड़ा। हिरण्यकशिपु ने अपने भक्त प्रहलाद, बेटे प्रहलाद को भी जो है काफी यात्राएं दी, लेकिन उसके बाद जब भगवान खंभे से प्रकट हुए बाहर और खूब युद्ध किया, तो उस युद्ध में ठीक उसी प्रकार हो रहा था जैसे जब दो टीम लड़ाई होती है आपस में, तो लोगों का दिल हार होता है कि हमारी टीम हार जाएगी, हमारी टीम हार जाएगी। उनको भी लग रहा था भगवान को क्योंकि कुछ करना भी, भगवान ने छोड़ दिया तो उनको और दिक्कत हो जाती देवताओं को। काफी देर तक ऐसे करने के बाद भगवान ने जोर से चांटा मारा और मार दिया और उनको मुक्त कर दिया। इस प्रकार और जो अवतार हुए इन हिरण्यकश्यप विनाश के, और भी जो अवतार थे उनमें भी भगवान बार बार अवतरित हुए। राम के रूप में आए तो कुंभकर्ण रावण का वध किया, कृष्ण के रूप में आए तो जयद्रथ शिशुपाल का वध किया। इस प्रकार इन तीनों को जो है बार बार मारा और मुक्त करके वापस भेज दिया, क्योंकि वचन दिया थे। तो जब भगवान के हाथों में खुजली होती है, भगवान युद्ध करना चाहते हैं, तो अपने ही भक्तों को, अपने एसोसिएट्स को इस प्रकार का एक क्रिएशन करते हैं भगवान इस प्रकार के युद्ध की, और उसमें उनको असुर बनाते हैं। उन्हीं असुरों को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि कोई भी उनको नहीं मार पाता, सब त्राही त्राही करते हैं, सब बोलते हैं भगवान आप कहाँ हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान उनको ऐसी सिचुएशन में डालकर, जब भगवान की, क्योंकि कुछ नहीं सामने दिख रहा आपको, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो भगवान के प्रति और अधिक वेदना से वो करते हैं क्या, प्रार्थनाएं करते हैं। और ये प्रार्थनाएं भगवान को बहुत अच्छी लगती है कि हो मेरे सारी जीवात्माएं जो मुझसे बिछड़ कर इस भौतिक जगत में आई हैं, आज रियलाइज कर रही है कि हाँ मेरी इनको हेल्प की जरूरत है। तो भगवान ऐसी सिचुएशंस में फिर उन भक्तों को जाकर बचाते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युद्धानाम धर्म से तदात्मानाम से जामे, मैं आता हूं इसलिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवानी युगे। हर युग में आता हूं धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म को, अधर्मियों को मारने के लिए, परित्राण है साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधु वृत्ति के लोग हैं, मैं अवतरित होता हूं और इस प्रकार उनकी रक्षा करता हूं। ये जो हम लोग आज 2 घंटे का एक क्रैक शो, क्या बोलते हैं इसको, क्रैकर शो देख रहे हैं, रावण के पुतले जले हर जगह, हर गली में, और 80% 90% लोग बम पटाखे बजाते हैं, जब इनका कहीं दूर दूर तक कोई राम से, कोई रावण से लेना देना नहीं होता इनको कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज कुछ प्रार्थना करनी विशेष इन लोगों ने, ज्यादातर जो लोगों को देखा जाता है क्या होता है मन में कि हाँ हमारा रावण सबसे बड़ा रावण होना चाहिए, हमारे रावण में सबसे ज्यादा पटाखे होने चाहिए और हम लोग रावण के आगे, हमारा रावण सबसे लेट जलेगा और फालतू के लोग उस रावण के सामने डांस कर रहे होते हैं ढोल बजाते हैं, जैसे कि पिताजी खड़े हैं पर और बेटे नाच रहे हैं, पिताजी की शादी हो रही है। तो सर नहीं तो प्यार नहीं, बापू का हमने रावण जलाया जी, कहीं है राम जी कहीं दिख रहे हैं, कहीं दूर दूर तक तो ये सब चीजें नहीं। एक बार ऐसी जगह पर हो गया, राम और रावण का युद्ध चल रहा था, बहुत बड़ा रावण सामने खड़ा, तो बार बार राम तीर मारे, संध्या होती जा रही, कहते मर, कहता नहीं पहले पैसे दो, रोल के मुझे मालूम तुम दोगे नहीं, मर ही नहीं रहता वो बड़ी देर तक भागवत तीर खत्म होकर बार बार तीर पकड़ा, कहता मर, कहता नहीं मरू पहले पैसे, उसको मालूम था सिचुएशन बड़ी अच्छी है, पैसे मांगोगे चाहिए। तो बाद में ना उसने मोला ही मार दी सर में, ठा खून ही पिलाया उसको लेके बाहर। कल्लू की रामायण है। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादातर लोगों को कुछ लेना देना नहीं राम से, राम के चरित्र से। आज हर व्यक्ति चाहता है राम राज्य, राम का भक्त कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि राम का भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, साधु वृत्ति रखनी पड़ेगी, अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा, और आजकल अच्छा व्यक्ति को बनना नहीं चाहता कोई, बनना चाहता अच्छा व्यक्ति कोई, एक आधा अच्छा व्यक्ति भी हो तो उसको देखकर लोग कहते बताओ कितना अच्छा था, उसके बाद कितने उसके ऊपर कितने दुख आ रहे हैं, हम तो नहीं बनते अच्छे, हम तो तेज चला चंड चला भी ठीक है, हम तो हम तो अपनी जुबान की खाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। पहले बोला जाता था कि तीन कैटेगरीज बनाई गई थी कि जैसे इफ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर किसी की हेल्थ खराब हो रही है तो समथिंग इज लॉस्ट, और पैसा इज मनी इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, पैसा हाथ की मैला फिर आ जाएगा, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब खत्म सब चला गया। क्यों? क्योंकि आपके करियर पे आपके आपके चरित्र पर एक दाग लग गया कि आप ऐसे हो या आप ऐसी हो, तो सब खत्म, पूरे समाज में तो तिरस्कृत कर देते। आज कलयुग है तो उल्टा हो गया, क्या मनी इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं दिवाला निकल गया, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ के लिए आदमी लोग चिंतित रहते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो बेचारा इंजॉय नहीं कर पाएगा। एंड करेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, क्या दिक्कत है, पैसे से करेक्टर है, जिसमें जितना ज्यादा पैसा उसको क्या दिक्कत है। आज सबसे ज्यादा करेक्टरलेस लोग पॉलिटिक्स में हैं, लोग सलाम करते हैं, सबसे करेक्टरलेस बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं जिनका करेक्टर ही नहीं, बड़े बड़े पोजिशन पर करेक्टरलेस लोग बैठे हैं, तो नथिंग इज लॉस्ट, पैसा आ रहा है क्या दिक्कत है, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, ये मैं बनवा दूंगा, ये भी कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो आज इन सब चीजों को देखा नहीं जाता, लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं था। राम राज्य में तो बताते हैं कि पिता की मृत्यु बेटे से पहले कभी नहीं होती थी, समझ रहे, मतलब सर शर्मा उल्टा बोल दिया, बेटा कभी पिता के सामने नहीं मरता था। आजकल तो दादा घर में अकेले रह रहे, ना बेटा बचा ना पोता बचा, क्या कारण, गलत आग लग गया, किसने उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए, रोड एक्सीडेंट में मारे गए, ये हो गया वो हो गया। राम राज्य में सब लोग इतने निश्चिंत थे, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, हमारे घर के हर चीज में ताले हैं, घर बाहर वालों से चिंता नहीं है, घर वालों से चिंता है नहीं, घर वालों में शक है इतना यह दरवाजा खुलने खुले रह गए तो ये कुछ कर देंगे नहीं? तो चरित्र नहीं रहा। तो राम राज्य का मतलब है कि राम कॉन्शियस होना, कृष्ण कॉन्शियस होना। अगर हम लोग अपने जीवन को अपने हृदय में सच में भगवान राम को उतारना चाहते हैं या अपने जीवन को सच में सही करना चाहते हैं, बहुत सिंपल रास्ता है, कुछ बड़ा नहीं करना, क्या करना है, केवल हम लोगों को थोड़ी सी बुद्धि चाहिए जिसके द्वारा हम लोग इस संसार को समझ सकें कि मटीरियल वर्ल्ड क्या है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है। आध्यात्मिक जगत क्या है और भौतिक जगत क्या है। ये भौतिक जगत किस प्रकार अनित्य है, अर्थात ये फिर कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। प्रलय होती है, एक वो प्रलय है जिसमें हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं बार बार। दूसरी प्रलय है जो टाइम बीत रहा है, एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट, दस मिनट बीतते जा रहे हैं, दूसरी प्रलय है। हमारा जो बचपन का शरीर हम छोड़ चुके हैं। तीसरी प्रलय जब युग बदलता है, और चौथी प्रलय जब ब्रह्मा जी और सारे अन्य देवता सब लोग समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रलय है ये हम सबको दिख रही है या हो रही है हमारे सामने। तो ये प्रलय यथा जो संसार है ये बड़ा इस प्रकार बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यहां पर बहुत अधिक देर के लिए सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार को बोला गया दुखालय अशाश्वतम, ये दुखों से भरा हुआ है और हर व्यक्ति यहां पर दुखी रहेगा किसी न किसी बात से, परेशानी से, परिवार के सदस्यों से या दूसरे लोगों से या फिर अपने शरीर से या अपने मन से, हर समय दुखी रहेगा। और ऐसा है भी, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे वृद्धावस्था का कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से दुखी परेशान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा क्यों है ऐसा, मेरे सारे के सारे प्रयास किस लिए हैं कि मैं सुखी रहूं, लेकिन इन प्रयासों के बाद भी मेरे ऊपर दुख आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, चाहता नहीं हूं लेकिन फिर भी आ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण, मैंने क्या गलती कर दी। तो हमने गलती क्या कर दी, गलती हमसे यह हो गई कि हम लोगों ने कभी भी अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया। और ये हमारी गलती भी नहीं है, ये गलती उस एनवायरनमेंट की है, उन गुरु के टीचर्स की है जो सुपर प्राइवेट स्कूल में हमें पढ़ा रहे, जिन्हें खुद नहीं मालूम आत्मा क्या है, भगवान कौन है, उन्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। घर में वो जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन लोगों को भी नहीं पता, पता है तो बताया नहीं, बताया तो समझ नहीं आया, तो क्या बताया, खाओ पियो ऐश करो, यही कर्म है, यही पूजा है, इतना करो, इतना लाओ, यहां जमा कराओ, इतना समझाया बस। तो कहीं दूर दूर तक ये ज्ञान ही नहीं दिया गया या ये समझने का प्रयास ही नहीं किया कि हम लोग हैं कौन और ये क्यों कष्ट मुझ पर आ रहे हैं। हमारे स्कूल की जो हमको एजुकेशन मिलती है या जो कॉलेजेस में मिलती है, जो हम लोग प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं, इन सबका एक ही उद्देश्य है और वो ये केवल ये कि हम लोगों को कोई एक ऐसी जॉब या ऐसा बिजनेस बाद में कर लें जिससे हम लोगों की अपनी रोटी चलती रहे। दैट्स ऑल, सारा ताना बाना रोटी के आसपास ही घूम रहा है, जिसका थोड़ा धन अधिक है तो वो सेंस एंजॉयमेंट के लिए दूसरी चीजों को करता है। दैट्स ऑल, कहीं पर भी हमारी एजुकेशन ये नहीं बता रही कि इन सारी समस्याओं से बाहर कैसे निकलना है, किस प्रकार हम लोग बार बार आने वाले बुढ़ापे, बीमारियों को और बार बार आने वाली मृत्यु को जीत सकते हैं कि बार बार दोबारा इसमें ना आना पड़े, कोई नहीं बता रहा है। बेचारे साइंटिस्ट लोग अपनी लेबोरेटरीज में, अपने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में प्रयास कर रहे हैं विजय प्राप्त करने के लिए, किस पर, बुढ़ापे पर। ऐसे ऐसे मेडिसिन इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं जिससे कि व्यक्ति को जल्दी से राहत मिल जाए, प्रयास किए जा रहे हैं कि व्यक्ति लंबी उम्र जिए या मरे ना, खूब प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये विधि का विधान है, ये इस युग का, अर्थात ये ऐसा नियम है कि हर व्यक्ति को जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, ध्रुव में जन्म मृत्यु से, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात फिर जन्म निश्चित है, उसको इस साइकिल में आना ही पड़ेगा। बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोग भी इस पर रिसर्च करते करते बूढ़े हुए, बीमारियां लगी, अपने इंजेक्शन खुद को लगाए और मर गए। फिर दूसरा नया साइंटिस्ट आया, उसकी थीसिस उठाई, उसको कॉपी करी, उसके आगे और अपनी डाली, वो भी बूढ़ा हुआ, उसको भी इंजेक्शन लगे, वो भी मरा। तीसरा आया, उसने भी ये किया। इस प्रकार लाइन लगी हुई मरने वालों की, अपनी नई थीसिस लिख रहे हैं, अपनी अपनी नई नई वो चीजें कॉपी कर रहे हैं, उसमें नया ऐड कर रहे हैं, उसने गलत बताया कि मैंने अच्छा बताया, तो इसको कंपाइल किया, फिर नया बनाया, वो भी मर गया। इस प्रकार सारे लोग पहले तो फिर भी 100-100 साल तक जीते थे, ये प्रैक्टिस करते करते 50-55 मर जाते हैं। उम्र तो 60-65 की आ गई ना जी एवरेज तो। बोल रहे पूछिए आजकल बच्चे बड़े तेज हो गए हैं। मैंने कैसे कहते 2 साल का बच्चा, जैसे आज हम जिस एक प्रोग्राम में गए थे उस घर से किसी घर से आ रहे थे तो उसका छोटा सा बच्चा अभी धीरे धीरे बोल पाता है, 2.5 से 3 साल के बीच का हुआ है। उन्होंने बताया कि ये सारी गाड़ियां जानता है, स्कूल में नहीं गया अभी पढ़ा नहीं कुछ, ABC भी ढंग से आती नहीं आती मेरे ख्याल से, बट वो सारी की सारी गाड़ियों को देख के बता देता नाम कौन सी गाड़ी। हम हैरान हो गए, गाड़ी पिताजी की गोद में बैठा रहा, पिताजी ने कुछ बताया चाहिए कौन सी गाड़ी है, उसने कहा स्विफ्ट। इंग्लिश पढ़नी नहीं आती मुझे बट गाड़ी का रंग रूप देख के बता देता है, वो डिजाइन देखकर है ना। मेरे को तो नाम भी इतने नहीं आते, पता नहीं कितनी कितनी गाड़ियां बता दी उसने, 7-8-9-10 तो उसी बता दी। ये अच्छा उसने पूछा ये कौन सी गाड़ी है, नहीं तो पहले आप बताओ कहते वैगनार, कहते नहीं सेंट्रो, मैं भी करूँ सेंट्रो गाड़ी। इतना छोटा सा बच्चा सारे गाड़ियों के नाम ठीक बोल रहा है। बता रहे थे लोग कि आजकल ये बच्चे कंप्यूटर भी चला लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत एक्टिव हैं, बहुत जो है इनके अंदर देख रहे हैं कि बहुत आजकल बहुत बच्चे एडवांस होते जा रहे हैं। तो हमने इसका ये कंक्लूजन निकला कि भाई देखिए बच्चा जो पहले 5-7 साल के बाद थोड़ा दिमाग लगाता था चलाता था, अभी वो जल्दी हो गया 3-4 साल में हो गया है ना। तो अगर पीछे देखें जो व्यक्ति 100 साल में मरता था उसकी एवरेज एज घट के कहाँ आ गई, 60-65 में आ गई, 70 में आ गई, तो 30-35 साल तो यही चलेगा हमारी लाइफ के पीछे के। तो अब जो उसने सीखना है करना था वो कितनी उम्र में करेगा, अगर अभी 15-20 के बाद ही जवान होगा तो फिर तो बड़ा टाइम रहेगा, कम रहेगा उसके पास, तो फिर ये एज भी कम हो गई। इसलिए बहुत बच्चे बहुत छोटी उम्र में एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो आप अपने जीवन में देखी थी पूछे के लोग हैं कि 20-22 साल के बाद व्यक्ति जो है ढंग से मैच्योर होकर बातचीत करना शुरू करता था, और अभी तो आप देखिए। तो इस प्रकार पीछे से उम्र घट गई है तो यहाँ पर भी बच्चा तेज हो गया, क्या करें, इतने में करना है। इतना ही नहीं, कलयुग में अंत में बताया गया कि उम्र इतनी कम हो जाएगी कि शायद 9 साल वाले को भी दादा बोलेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में अभी हम लोगों की जैसे हाइट 6-6.5 फीट रहती है ना लोगों की आजकल, तो कलयुग की शुरुआत में तो और भी लंबी थी उम्र 100 साल थी, अभी 5,300 वर्ष बीते खाली कलयुग के शुरू हुए, तो लोगों की हाइट भी कम होने लगी, बुद्धि कम होने लगी, उम्र कम होने लगी। भागवत में 5,000 साल पहले लग गया था क्या, प्राणीण अल्प आयुष सभ्य कलो वस्त्र निवेजना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य पात्रता, कि कलयुग के लोग जो है बड़े मंद बुद्धि के होंगे, सुमंद बुद्धि के, और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा है ना। प्रायण अल्प आयुष, प्राय इन लोगों की उम्र बड़ी कम हुआ करेगी और हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे भौतिक परेशानियों से, वो हम है बुद्धि भी कम है उम्र भी कम है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अभी 4,27,000 वर्ष पड़े कलयुग के, कितने, हाँ 2012 फाइनल नहीं है, कितने हैं 4,27,000 बैलेंस है अभी, और इन 4,27,000 तक पहुंचते पहुंचते अपनी हाइट भी सोच लेना क्या होगी। जैसे अभी बताते हैं ना 2021 का बताते हैं, सीडी है वीडियो है हमारे पास, कि पानी की वजह से कितने झगड़े होंगे देखना भी, अभी तो नहीं मालूम पड़ रहा ना, मिलकर खोलते पानी आता है कितना अच्छा लगता है। उन जगहों पर जाओ देश में ही है जहां पर 3 बार राशनिंग से पानी मिलता है, एक डब्बा ऐसे ना इससे थोड़ा बड़ा डब्बा होता है, पीने का पानी 3 बार आता है वहां पर, सुबह दोपहर और शाम, एक एक डब्बा पानी मिलेगा राशन से, आप चलिए पानी पीजिए, अब शाम दोपहर में आएंगे पानी नहीं है ना। बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा उन्होंने ना समुद्र के पानी को साफ करने की भी कोशिश करी है, क्योंकि पानी खत्म होता जा रहा है, इतना बड़ा प्लांट लगाया कि उसका पानी साफ करते करते ही, खारे पानी को साफ करते करते ही इतना पैसा लग रहा है कि सारी सरकार का पैसा उसमें जा रहा है। उन्होंने छोड़ो भैया लड़ाई करके ले लो मुझे अच्छा। तो इस प्रकार बहुत जल्दी बहुत समय के बाद हम सभी झगड़े देखेंगे। श्री श्री राधा रविंद्रन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गणिताय भगवान की, जगत गुरु श्रील भगवान की, ताय गौर विमान। तो ये सारे सारे क्राइसिस होंगे आने वाले दिनों में, और 4-27 बचे में बैलेंस है अभी, तो इतनी बुरी हालत होने वाली है। लेकिन बताइए ये 10,000 साल का पीरियड है कौन सा, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तब से शुरू हो गया 500 साल पहले से, और 10,000 तक चलेगा, 9,500 साल अभी बचे हुए हैं। इस कलयुग में हुई ये 10,000 साल सत्युग की कहलाएंगे, और जो जो लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस मूवमेंट से, हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ेंगे, वो बहुत ही बुद्धिमान कहलाएंगे और जल्दी से मुक्त हो जाएंगे। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हम अभी से अपने इन कष्टों को दूर करने के लिए, इस जीवन मरण के चक्र से बचने के लिए अपनी पूरी एनर्जी, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार 8 बजे वाले लोग भागते हैं, उसी प्रकार अपनी पूरी की पूरी एनर्जी भगवान को प्राप्त करने में, उनकी कथा सुनने में, हरिनाम लेने में लगा डाल। कितना समय बचा है हमारे पास? ज्यादा नहीं बचा। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे कुंभकर्ण ने जो मांगा था वरदान कि मैं 6 महीने सोऊं और 6 महीने जागूं, तो हमारे में सारे के सारे कुंभकर्ण की संतान ही तो है। हम भी 6 महीने जागते हैं, 6 महीने सोते हैं। नहीं, ज्यादा लोग सब 10-12 घंटे तो सोते हैं। जीवन तो आपस ऐसे नहीं कर सकता। तो सारे कुंभकर्ण के संतान, हाँ अगर ठीक थोड़ा होना चाहते, सतगुण में आना चाहते हैं, तो व्यक्ति को चाहिए कि 6 घंटे की नहीं देते ना, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। बहुत ज्यादा शरीर का काम करते हैं तो 7 घंटे, दैट्स ऑल। लेकिन बाकी समय 5 घंटे के बच्चे को कहाँ जाएंगे? उसको 2 घंटा चैंटिंग में लगाइए, 1 घंटा रीडिंग में लगाइए, कथा सुनने में लगाइए, तब जाके इस तरह हमारा हृदय शुद्ध होना शुरू होगा। और तब हम लोग वास्तव में अपने हृदय में, जो कि रावण जैसा हृदय हमारा, जो कि भोग विलास के चक्कर में लगा रहता है इच्छाओं के द्वारा, तो वहां पर हम लोग भगवान श्री राम को आमंत्रित करेंगे ताकि वो हमारे हृदय को साफ कर उसमें विराजे। तब हम कहेंगे कि विजयदशमी का दिन है। अगर अन्यथा तो पटाखे चलाइए, बस नाची जाओ, उसके आगे कुछ नहीं, तो रावण की आत्मा निकल के तुम्हारे शरीर में जाएगी। ठीक है ना? बोलिए हरे कृष्णा। श्री भगवान की विजयदशमी महामहोत्सव की गौ प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न है तो आप आगे रख सकते हैं।